ओम शांति, ओम शांति। हम सभी भक्ति में गाते रहे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो या त्वमेव सर्व मम देव देव, या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हरी कृपा से सुख घनेरे। तब शायद कभी ये नहीं सोचा था कि सचमुच साकार में भगवान आकर के हमें सर्व संबंधों की अनुभूति कराएंगे। और अब बाबा खुद हमें ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं कि सर्व संबंध मुझसे ही जोड़ो, और संग तोड़ो। किससे जोड़ना है? बाबा से ही जोड़ना है। और अब हम जोड़ नहीं पाते हैं, जब भगवान हमारे सामने हाजिर है और खुद ऑफर कर रहा है कि सब संबंध मुझसे ही निभाओ। तो आज बाबा हमारे लिए सब कुछ है, और ये उसकी शक्ति है कि वो एक ही सर्व संबंधों का अनुभव करा सकता है। लौकिक में किसी भी संबंध में ये शक्ति नहीं है। माता अलग है, पिता अलग है, बंधु माना भाई अलग है, बहन अलग है, दोस्त अलग है, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है, यानी दिल बटी हुई है। कुछ किसी संबंध में, कुछ दिल किसी संबंध में, है ना ऐसे। लेकिन एक में ही सर्व संबंध माना पूरा दिल एक बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें एकाग्रता का अनुभव कराता है। और दुनिया में अगर किसी संबंध की कमी होती है तो भी दुख अनुभव करते हैं, किसी की माँ नहीं होते, किसी के पिता नहीं होते, किसी को भाई नहीं होता, किसी को बहन नहीं होती, या और भी कई संबंध हैं, तो वो महसूस करते हैं कि ये संबंध मेरा नहीं है, ये होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बाबा मिला माना अगर लौकिक में कोई संबंध की कमी भी है तो वो कमी किससे पूरी हो जाती है? बाबा हमें वो अनुभव कराते हैं। अगर पिता नहीं है तो वो हमारा ऐसा पिता है कि हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हमारा लौकिक पिता नहीं है। तो हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव बढ़ाते जाना है। ये हमें योग में भी बहुत मदद करता है। सहज योगी हैं हम, तो सहज योगी कब है? जब बाबा से हमारा संबंध है और समीप का संबंध है। सिर्फ संबंध नहीं, सिर्फ संबंध से याद नहीं होती, लेकिन समीप संबंध में नेचुरल याद होती है। उसमें हमें याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें याद आती है, अपने आप वो याद आती है। और संबंधों से हमें प्राप्ति भी होती है। दुनिया में भी हमारे संबंध होते हैं तो वो हमें प्राप्ति कराते हैं, नहीं कराते हैं? संबंधों से सुख मिलता है, इसीलिए हम परिवार में रहते हैं। संबंध से ही हमें सहयोग मिलता है, जब हमें आवश्यकता है तब उनकी मदद हमें मिलती है, तभी हम दोस्त भी बनाते हैं ताकि समय पर वो हमारे लिए हाजिर हो जाए अगर हमें जरूरत है तो। तो स्नेह, सुख और प्राप्ति, ये हमें संबंध से होती है, और यही हमें बाबा से अनुभव होता है। जैसे ही हम दैवी परिवार में आते हैं, उस रूहानी परिवार, रूहानी परिवार से रूहानी स्नेह, रूहानी स्नेह और ईश्वरीय स्नेह, वो हमें अनुभव होता है। और वो स्नेह ही हमें समीप लाता है। सबका अनुभव है हम जब बाबा के पास आए तो ज्ञान तो बाद में समझा, पहले क्या अनुभव हुआ? क्योंकि बाबा अपनी पालना किसी ना किसी को निमित्त बना करके देते हैं, तो पूरे जो ईश्वरीय परिवार की निमित्त आत्माएं हैं वो हमें वो अनुभव कराती हैं, ईश्वरीय पालना का हमें अनुभव कराती हैं, और वो हमें बाबा के समीप लाता है। और कैसे हमें बाबा की मदद मिलती है ये सब हम अनुभवी हैं, अनुभवी हैं। हर एक को अनुभव है कि दुनिया में भी लोग कहते हैं कि दुख के समय भगवान को याद करते हैं, वैसे याद नहीं करते, लेकिन दुख होगा तो जरूर भगवान याद आएगा। तो कई बार हम बाबा के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, जब विघ्न आएंगे तब हमें बाबा ज्यादा याद आता है, तब हमारी लगन लग जाती है, और जब लगन लग जाती है तो बाबा की मदद का भी हम अनुभव करते हैं। मुझे भी याद है कितनी बार जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और हम बाबा को याद करते हैं और कैसे बाबा की मदद से वो सहज हो जाता है। तो पिछले साल ही ऐसे तो बहुत अनुभव हैं, लेकिन अभी जो नजदीक का है वो सुना रहे हैं आपको। तो पिछले साल यूरोप जाना हुआ था और वहाँ स्विट्जरलैंड से फ्रांस जाना था, ट्रेन में जाना था। तो एक स्विट्जरलैंड के भाई थे, वो हमें स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। तो हमारे लिए तो वो नया स्थान था क्योंकि हम पहली बार गए थे वहां पर। और वो भाई जब सामान लेकर के जा रहे थे प्लेटफॉर्म पर तो वो काफी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन मैं इतना तेजी से नहीं चल पा रही थी तो मैं पीछे रह गई। मेरे हाथ में भी एक सूटकेस था, एक सूटकेस उनके पास था, तो वो काफी आगे निकल गए और बीच में ऐसा हुआ भीड़ आ गई, कुछ लोग आ गए, तो मेरी नजर से वो भाई ओझल हो गए। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि वो किस तरफ गए, क्योंकि मैं जब चल रही थी तो मेरे सामने एक एस्केलेटर आया जो सीढ़ी होती है नीचे ऊपर ले जाने वाली। तो मैंने सोचा कि दिख नहीं रहे हैं भाई तो लगता है शायद नीचे चले गए, प्लेटफॉर्म नीचे होगा, ऐसा सोचकर मैंने थोड़ा नजर भी घुमाई चारों तरफ, लेकिन वो मुझे नहीं नजर आए और मैं फिर नीचे उतर गई। अब मैं नीचे उतर के देखने लगी तो भी वो मुझे नजर नहीं आए, थोड़ा मैं आगे भी गई तो भी नजर नहीं आए, और ट्रेन छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तो मैं परेशान, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और अगर ट्रेन छूट गई तो। तो एक संकल्प आया मन में, फिर मैंने कहा बाबा को याद किया कि अभी मैं क्या करूं। तो मुझे टचिंग हुई, ऊपर चले जाओ, वापस सीढ़ी से वापस ऊपर चले जाओ। तो मैं फिर वापस सीढ़ी से ऊपर आ गई प्लेटफॉर्म पर, और फिर मैं फिर देखने लगी उनको ऊपर आकर के, तो अब वो मुझे उस प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर दिखाई दिए और उनके साथ दो पुलिस भी थी। तो मैं फटाफट गई वहां पे और वो भी मुझे ढूंढ रहे थे, और उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन आप कहाँ चली गई, मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। मैंने कहा आप फास्ट निकल गए और मैंने आपको मिस कर दिया और मैं नीचे प्लेटफॉर्म पे चली गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं फटाफट चढ़ो, ट्रेन छूटने वाली है। फिर ट्रेन में उन्होंने मुझे बिठा दिया, देखो ये बाबा की मदद है, कैसे ट्रेन छूटने से पहले बाबा ने मुझे। और उन्होंने मुझे फिर चढ़ाने के बाद कहा कि मेरे पास वो जो सूटकेस था, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट होती है, आपको याद होगा कि वो फ्रांस में पीछे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके बाद से सिक्योरिटी काफी टाइट हो गई है। तो उनके पास जो सूटकेस था उसकी सारी इंक्वायरी होने लग गई और वो पुलिस आ गई वहां पर तुरंत, और अगर मैं नहीं पहुंचती, उन्होंने कहा फिर कि ये पैसेंजर है और ये इनका सूटकेस है, ये मेरा सूटकेस नहीं है, ऐसे करके। तो मतलब वो भी ठीक हो गया और मैं ट्रेन में बैठ भी गई, और फिर 2 मिनट के बाद ट्रेन छूट गई। तो ऐसे बाबा बिल्कुल तुरंत हमने बाबा को कहा और हुजूर हाजिर है, ऐसा हम महसूस करते हैं। ऐसे कई अनुभव है, ये मैंने एक आपके साथ शेयर किया कि कैसे पिता के रूप में बाबा हमेशा हमारा रक्षक है। जैसे ही हम उसे उस संबंध से याद करते हैं, मुझे याद है कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, मेडिकल में पढ़ती थी, उस समय मेरी एक टर्म में तबीयत खराब हो गई और एग्जाम्स की डेट फिक्स हो गई थी, और मुझे पता था कि अगर यही एग्जाम की डेट रही तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर एग्जाम की डेट सरक गई तो फिर हो सकता है तब तक मैं ठीक हो जाऊं और एग्जाम दे पाऊं। तो मैंने ऐसे ही उस अधिकार से, ऐसे कोई बहुत इच्छा से कि एग्जाम सरक जाए नहीं, लेकिन उस अधिकार से मैंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसे ऐसे हैं और अगर ये एग्जाम की डेट 15 दिन सरक जाए तो शायद मैं एग्जाम दे पाऊंगी और पास हो जाऊंगी। मैंने ऐसे ही सहज भाव से कि मेरे पिता हैं और मैं उनके सामने अपने दिल की बात रख सकती हूं और मेरे सामने ये अभी मुश्किल है। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें बाबा के साथ ऐसा कहना भी चाहिए या ऐसी इच्छा रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखने में तो कोई सही इच्छा नहीं लगती है, गलत इच्छा लगती है, क्योंकि उसमें बहुतों का नुकसान भी हो सकता है कि अगर डेट आगे सरक जाएगी तो और स्टूडेंट्स का टाइम तो वेस्ट जाएगा। लेकिन ऐसे ही मैंने संकल्प कर दिया और मैंने देखा नेक्स्ट वीक कोई कारण से हड़ताल हो गई और वो हड़ताल के कारण 15 दिन, ठीक 15 दिन एग्जाम सरक गए। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखो मैंने तो ऐसे ही बाबा को कहा, कोई हड़ताल होने की कोई बात ही नहीं थी उस समय और कैसे हड़ताल हो गई और एग्जाम सरक गए। तो ऐसे बाबा बच्चे अगर दिल के सच्चे हैं तो कैसे बाबा हमारे इस संसार की भी, भले ही वो हद की कामनाएं हैं, बाबा तो वैसे हमें हद की कामनाओं से ऊपर उठाते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस करते हैं कि वो तक भी हमारी बाबा पूरी कर देता है। तो ये मदद समय प्रति समय हम संगम युग के जीवन में अनुभव करते हैं। तो बाबा हमारा माता है, पिता है, शिक्षक है, गुरु है, साजन है, साथी है, सखा है और एक और संबंध भी है। आप सब प्रवृत्ति वाले बैठे हैं ना, तो एक और संबंध कौन सा होगा आप बताएंगे? कौन सा होगा? बच्चा। तो बाबा बच्चा भी है, कुमार कुमारियों के लिए उसे अपना बच्चा समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो प्रवृत्ति वाले हैं उनके लिए तो सहज है कि बाबा हमारा बच्चा भी है। तो माता के रूप में बाबा की पालना हम ब्राह्मण जीवन में अनुभव करते हैं। भगवान हमारा पालनहार होगा ऐसा भक्ति में कहते हैं कि भगवान पाल रहा है, भगवान ही पालना देता है, लेकिन सचमुच बाबा हमारी पालना कर रहे हैं ये हम अनुभव करते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव करते हैं, सुबह सुबह हम महसूस करते हैं कौन हमें उठा रहा है। मधुबन में तो गीत भी बजता है जैसे कोई लोरी सुना के उठा रहा है, है ना, अमृत वेला शुद्ध पवन है। और नहीं तो घरों में भी जब हम सोते हैं तो राइट टाइम पर हमारी नींद खुल जाती है और हम महसूस करते हैं कि बाबा ने मुझे उठा दिया, समय पर जैसे बाबा हमें उठा देता है। ऐसे ही रात को हम सोते हैं तो बाबा की याद की गोदी में हम सो जाएं, जैसे बच्चे माँ की गोदी में सो जाते हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं मेरी याद की गोदी में सो जाओ। और सारे दिन में अगर हम थक भी जाते हैं, मानो बहुत सारे काम हम करते हैं दिन भर में, हम अगर सेंटर पर हैं तो सेंटर की सेवाएं होती हैं, प्रवृत्ति में हैं तो प्रवृत्ति की भी बहुत कारोबार होती है, या बिजनेस में है, धंधे में है, जॉब में है, जहां भी किसी का दिमाग थकता है तो किसी का शरीर थकता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति काम होता है उस अनुसार हमें थकान होती है। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि जब थक जाओ तब बाबा की बाहों में आ जाओ, या बाबा आपके सिर की मालिश करके आपको पूरी तरह से हल्का कर देगा, लेकिन हमें याद आना चाहिए, नहीं तो हम सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। बालक सो मालिक हैं हम, बाबा हमारा मालिक है और हम बालक हैं। तो बालक क्या करता है, बच्चा जब माँ बाप के साथ होता है तो बिल्कुल निश्चिंत होता है, होता है ना, कहीं भी जाते हैं बच्चे माँ बाप के साथ तो कितना उछल कूद करते हैं, क्योंकि पता है माँ बाप हैं, कुछ मुश्किल नहीं होने वाली, और होगी भी तो ये संभाल लेंगे। लेकिन बाई चांस अगर माँ बाप से बिछड़ गया तो फिर चाहे कितना भी अच्छी जगह है, कितना भी अच्छा मेले में घूम रहा था, क्या करने लगेगा, रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा, कहाँ चले गए है ना, कैसे मिलेंगे, कोई उसे आइसक्रीम भी लाके देगा मनाने के लिए, या कोई खिलौना भी लाके देगा तो भी उसे उठाकर फेंक देगा, अपने माँ बाप के बिना उसे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो निश्चिंत कब तक था, जब तक माँ बाप साथ हैं। तो बाबा मेरे साथ है तो सारा बोझ किस पर है, हम ट्रस्टी हैं, करण करावनहार बाबा है। जैसे हम वो अर्जुन की कहानी सुनाते ना, हमारे ही यादगार हैं वो, कि अर्जुन जब युद्ध में लड़ रहा था तो जब अभिमन्यु को मार दिया गया, धोखे से मारा गया, तो उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला दूंगा। अब ये तो कृष्ण जानते थे कि ये प्रतिज्ञा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है, और अगर वो नहीं मरा तो अर्जुन क्या करेगा। तो दोनों साथ में थे, क्योंकि वो उनके साथी थे, सारथी बने थे। तो रात को शिविर में सब सो रहे थे, अर्जुन भी सो गया, और कृष्ण जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि अगले दिन का युद्ध कैसे होगा जो अर्जुन जीते, ताकि वो अपने आप को जलाए नहीं। और फिर अर्जुन के ऊपर कृष्ण की नजर पड़ी, देखा ये तो खर्राटे लेके सो रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इतना निश्चिंत कैसे सो सकता है। तो उन्होंने उठाया उसको, अर्जुन तुम इतना निश्चिंत कैसे सो रहे हो, तुमको याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा भगवान मुझे याद है कि मुझे कल क्या करना है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप मेरे साथी हैं, आप मेरे साथ हैं, और आप मेरी चिंता कर रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो बच्चों के लिए माँ बाप ऐसे होते हैं, चिंता कौन करता है, बच्चे करते हैं, माँ बाप करते हैं, माता पिता चिंता करते हैं और बच्चे तो मौज करते हैं। तो हमें बाबा ने इसीलिए कहा संगम युग हम बच्चों के लिए मौजों की जीवन है, बेफिकर बादशाह की जीवन है, बेगमपुर की जीवन है, क्योंकि सारे फिकर हमने किसको दे दिए, पिता के रूप में हमने बाबा को दे दिए। तो सचमुच दे दिए, ये अपने आप को देखना है। अगर हम वो संबंध बाबा से निभा रहे हैं तो सचमुच हमने अपने सारे बोझ, अपने फिकर बाबा को दे दिए, और बाबा के वर्षे के हम अधिकारी हैं। पिता के रूप में सारा बाबा का वर्षा हमारा है, जन्म होते ही उसकी प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। और कितनी बेहद की प्रॉपर्टी है बाबा की, वर्तमान में ज्ञान गुण और शक्तियों के सर्व खजाने वो हमारे हैं, और भविष्य में 21 जन्मों तक पद्मा पदम पति बाबा ने कहा चारों सुख संपूर्ण मिलने वाले हैं, तन मन धन संबंध सभी सुख होंगे, भविष्य में नहीं होंगे, अभी भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा हिसाब किताब भी है बीच में, और उस हिसाब किताब को कैसे चुकतू करना है वो भी बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। तीनों कालों का ज्ञान और तीनों लोकों का ज्ञान स्वयं शिक्षक बन करके बाबा ने हमें दिया है, और उसके आधार पर ये सुख हम अभी भी अनुभव कर सकते हैं, सभी प्रकार के सुख जिसे हम अतीन्द्रिय सुख, ईश्वरीय सुख कहते हैं। शिव बाबा हमारे सद शिक्षक हैं, परम शिक्षक हैं। दुनिया में भी कोई बहुत प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर उनको पढ़ाने वाले होते हैं, तो उनको कितना नशा होता है कि हम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कौन हमें पढ़ाते हैं। तो हम भी कितने ऊंचे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला भी कौन है, स्वयं भगवान हमारा टीचर है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो ये नशा हमें रहता है, ये खुशी हमें रहती है कि कितनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। जो कहा कि तीनों कालों और तीनों लोकों की पढ़ाई बाबा ने हमें पढ़ाई है। तो दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो होता है थ्योरी पढ़ना, थ्योरिटिकल जिसे हम कहते हैं नॉलेज, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी जो पढ़ा उसे हमने जीवन में कितना उतारा, उसे हमने प्रयोग में कितना लाया। तो हमारी पढ़ाई केवल थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है केवल ज्ञान सुनना, वो एक स्टेज है, लेकिन उस ज्ञान को समाना और स्वरूप बनना ये दूसरी स्टेज है। तो सुनते तो हम सभी हैं, सुनना बहुत अच्छा भी लगता है, सुनकर खुशी भी होती है, लेकिन आचरण में कितना है, तब हम कहेंगे कि हम बाबा के रेगुलर पंचुअल स्टूडेंट हैं, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट हैं। एक शिक्षक क्या चाहता है उसका स्टूडेंट क्या हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो, तभी उसको गर्व होगा कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं। ऐसे ही कहानी आती है, वो भी महाभारत की स्टोरी है, कि कौरव पांडव द्रोणाचार्य के पास पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो वो गुरुकुल के प्रारंभ के दिन थे, तो बहुत एक सरल पाठ जो गुरु ने समझा वो पढ़ाया। छोटे छोटे थे उस समय कौरव पांडव, जैसे कोई बच्चा नर्सरी में पढ़ना शुरू करता है, तो वो कहा याद करके आना, क्रोध नहीं करना चाहिए, सिंपल सा पाठ है, क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन मैं ये पाठ सुनूंगा, ऐसे गुरु ने कहा। सभी बच्चे दूसरे दिन आए और गुरु ने कहा कि बच्चे पाठ याद करके आए हो, कल जो पाठ दिया था, होमवर्क देता है ना टीचर हमेशा करने के लिए, हमें भी बाबा होमवर्क देते हैं, कई बार बाबा होमवर्क देते रहे हैं कि 6 मास के लिए बच्चों को ये होमवर्क है, क्रोध मुक्त बनो, या जो भी बाबा ने समय समय पर हमें होमवर्क दिए हैं। तो ऐसे ही वो पूछा उन्होंने, तो सभी ने सुना दिया, बहुत सहज था, क्रोध नहीं करना चाहिए। पर युधिष्ठिर उन्होंने नहीं सुनाया, तो गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर तुमने याद नहीं किया पाठ? तो उसने कहा, गुरुजी मैंने याद तो किया लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़ी आंख दिखाई, इतना सरल पाठ तुमको याद नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, कल याद करके आना। अब दूसरे दिन फिर पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर पाठ याद करके आए हो? कहा, गुरुजी आज भी कोशिश तो की लेकिन याद नहीं हुआ। अब गुरु को गुस्सा आ गया, पाठ क्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए, और गुरु ने गुस्सा किया उसके ऊपर और थोड़ा उसको डांटा, अगर कल याद नहीं हुआ तो कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, आज तो बैठने देते हैं। फिर अगले दिन फिर पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? तो गुरुजी कोशिश तो की है, सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब गुरु को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने एक थप्पड़ उसे जोर से लगाया। तीसरा दिन हो गया, अभी तक पाठ याद नहीं हुआ। तो उसने कहा, गुरुजी अब याद हो गया? तो कहा, थप्पड़ लगने से याद हुआ? तो उसने कहा, नहीं, आपने कहा था क्रोध नहीं करना चाहिए, कल मेरे को दुर्योधन ने गाली दी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे मन में गुस्सा आया था उसके लिए, तो मुझे लगा शायद मुझे याद नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने जो मुझे थप्पड़ मारा अब मुझे गुस्सा नहीं आया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। तो इसको कहते हैं याद होना या जीवन में आना। हमको बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच कर बोलो। कितनी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन याद होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। हाँ, शायद पूरे संगम युग का पुरुषार्थ इसमें चला जाता है। हम हमेशा कम नहीं बोल पाते, धीरे नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं हमारी आवाज ऊंची हो ही जाती है, कहीं ना कहीं मीठे की जगह हम कड़वा बोल ही जाते हैं, किसी ना किसी को दुख दे ही जाते हैं अपने शब्दों के द्वारा, करते नहीं करते। याद रहता है रोज जो बाबा ने पढ़ाया हमें, तो इसका मतलब हमारी जो प्रैक्टिकल पढ़ाई है उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और इसीलिए बाबा हमें चार्ट रखने के लिए कहते हैं कि रोज रात को सोने से पहले हमें अपना चार्ट रखना है। टीचर के रूप में ये बाबा की हमें शिक्षा है। तो चलो हम लिख नहीं सकते, लिखने में कई बार अलबेलापन आ जाता है, रोज रोज सोने के पहले इतना बिजी थे आप, इतना थके हुए थे, बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई, चार्ट कहाँ लिखेंगे। पर कम से कम चेक तो कर सकते हैं सारे दिन में क्या किया, चेक कर सकते हैं कितना टाइम लगता है अपने आप को चेक करने में। कौन भाई बहने हैं जो रोज चार्ट देखते हैं अपना, चलो लिखते हैं वो भी होंगे, जो लिखते हैं वो हाथ उठाएं पहले। देखिए लिखते भी हैं, हाँ, तो कम से कम कुछ गिनती के हैं 8-10 जो अपना चार्ट लिखते हैं, वो अपने लिए ताली बजाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा गुण है चार्ट लिखना। और जो लिखते नहीं हैं लेकिन चेक करते हैं, हाँ, वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो बहुत हैं, हाँ, वो कई 100 होंगे ऐसे समझो, तो वो भी अपने लिए ताली बजाएं। हाँ, और जो ना चेक करते हैं ना लिखते हैं वो अंडरलाइन करें कि हमें रोज सोने से पहले अपने टीचर को अपना चार्ट जरूर देना है, कि बाबा के साथ हम वो शिक्षक का संबंध तभी अनुभव करते हैं जब उनकी शिक्षाओं को हम स्वरूप में लाते हैं। और बाबा कई बार हमें कहते हैं कि मैं आपका ऐसा टीचर हूं जो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। और स्कूलों में तो कितनी छुट्टी होती है, होती नहीं होती, लेकिन शिव बाबा कभी भी बहाना नहीं देते, इतना दूर परम धाम से आकर के हमारे लिए बाबा ने मुरलियां चलाई हैं। ये नहीं कि मेरे को आज सिर दर्द है, हम बहाना देते हैं ना पढ़ने में कि आज तबीयत ठीक नहीं थी ना इसीलिए क्लास नहीं किया, आज बच्चा बीमार था ना इसीलिए क्लास नहीं किया, आज घर में मेहमान आ गए ना इसीलिए, आज बहुत बारिश हो गई ना इसीलिए, कोई ना कोई कारण तो बनता है, तो हम मुरली मिस कर देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं चलो आप सेंटर पर नहीं आ पाए, कोई कारण से हम सेंटर पर नहीं आ पा रहे, हो सकता है कई बार सचमुच ऐसे प्रवृत्ति में कारण बन जाते हैं, लेकिन मुरली हमें मिस नहीं करनी है। और आज तो बहुत साधन है, हम सहज मुरली पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि सेंटर से ही हमें मुरली मिलेगी, हाँ पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, आज सबके मोबाइल पर मुरली आ जाती है, इंटरनेट है इंटरनेट पर मुरली आ जाती है, टीवी है पीस ऑफ माइंड टीवी पर मुरली आ जाती है, लेकिन मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। और वो भी एकाग्रता से सुननी है, ऐसे नहीं काम करते करते मुरली सुन रहे हैं, मुरली भी चल रही है और रसोई में खाना भी पक रहा है, कितनी मुरली अंदर गई, फिर पूछेंगे क्या सुना, मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन याद नहीं है बाबा ने क्या कहा। यानी हॉल के कमरे से बाहर निकलते ही वहां की वहां रही, ऐसा हो जाता है कितनी बार। और ऐसा क्यों होता है, सबके साथ नहीं होगा, जो एकाग्रता से मुरली सुनेंगे यानी मन बुद्धि हॉल में ही बैठे हैं तो हमें आधे से ज्यादा मुरली याद होगी। लेकिन अगर मुरली सुन रहे हैं और साथ साथ कहीं और भी मन चक्कर लगा रहा है, ये काम वो काम, इससे मिलना, उसने ये कहा उसने ये किया, फिर थोड़ा मुरली सुन लिया, फिर थोड़ा चक्कर लगा लिया, बैठे होते हैं मुरली सुनने, लेकिन मन कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, तब हमारी ये हालत होती है कि हॉल से बाहर निकले और बाबा तो कहता है सेवा के संकल्प भी नहीं चलने चाहिए। हम सोचते हैं सेवा के संकल्प तो शुभ संकल्प है ना, सेवा के संकल्प तो विश्व कल्याण के संकल्प हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं, करने चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब सेवा के संकल्प भी नहीं, यहाँ तक कि योग के समय भी बाबा कहता है कि योग के समय में भी सेवा के संकल्प नहीं चलने चाहिए। जिस समय जो संबंध है वैसे ही उस संबंध को निभाना, तब हमें उसमें संपूर्णता का अनुभव होता है। सुन हम मुरली रहे हैं और उस समय हमें सखा के संबंध की याद आ रही है, उस समय हम बाबा से अपने दिल की बातें कर रहे हैं, मानो बाबा हमारा सखा है, हम उसे खुदा दोस्त मानते हैं, हमें दोस्त का संबंध बहुत पसंद है। किसी किसी को दोस्त का संबंध बहुत पसंद होता है क्योंकि दोस्तों से हम कुछ भी बातें कर सकते हैं ना, माँ बाप में भी थोड़ा संकोच होता है, कुछ बातें हम माँ बाप से भी नहीं कर सकते, तो फिर वो हर समय जो है वो दोस्त के रूप में ही बाबा को अपने साथ रखते हैं। हम मुरली सुन रहे हैं तो भी दोस्त से बातें कर रहे हैं तो वो सही है। उस समय बाबा हमारे लिए शिक्षक बनकर के पढ़ाने आए हैं, तो वो हमारा गॉडली स्टूडेंट स्वरूप है, तो उस समय हमें गॉडली स्टूडेंट रूप में ही बाबा से मुरली सुननी है। गुरु के रूप में, जो संबंध है, बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। गुरु हमें गति सदगति की राह बताते हैं, हमें हमारे कर्तव्यों की स्मृति दिलाते हैं, तो वो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। लेकिन गुरु से लोग क्या आशा रखते हैं, गुरु हमें वरदान दे, गुरु हमें आशीर्वाद दे, गुरु हमें मंत्र दे। दुनिया में लोग गुरु करते हैं किस लिए करते हैं, गुरु के संबंध से क्या चाहते हैं? आप लोगों ने भी, कईयों ने गुरु किए होंगे ज्ञान में आने से पहले, किसी ने किए थे हाथ उठाइए। हाँ देखिए कितने लोगों ने गुरु किए, तो गुरु से क्या आशा रखी, गुरु मेरे सिर पर हाथ रख दे, सिर पर हाथ रख दे तो मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। कोई मुश्किल है, गुरु सिर पर हाथ रख दे, गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु ने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, माना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही हम सोचते हैं। और जब बाबा के पास आते हैं तो भी हम यही आश रखते हैं। मुझे याद है दादियों के सामने, बड़ी दादी जी के साथ हम कई सालों तक सेवा करते रहे, तो इवन बड़े बड़े VIP, यहाँ तक कि महात्मा, संत महात्मा भी जब दादी जी के सामने आते थे, क्योंकि बहुत बार संत सम्मेलन हुए हैं यहाँ पर, तो अपना सिर दादी के आगे कर देते थे, दादी जी हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। वो भी इच्छा रखते थे कि दादी जी सिर पर हाथ रख देंगी तो हमारा ये सब कुछ सहज हो जाएगा। तो सिर पर हाथ रखना माना क्या, कौन सा हाथ बाबा ने हम बच्चों के सिर पर रखा है गुरु रूप में, कौन सा हाथ रखा है? श्रीमत का हाथ। बाबा की श्रीमत का हाथ सदा ही हमारे सिर पर है। श्रीमत पर चलना माना बाबा की दुआएं हमारे हर कार्य को सहज बनाती हैं। बाबा ने हमें मंत्र भी दिया है, कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भव मध्याची भव। वो मंत्र देते हैं, वो गुरु मंत्र देते हैं, तो वो कहते हैं अपना मंत्र किसी को मत बताना, अगर ये मंत्र किसी को बताया तो मंत्र काम नहीं करेगा। हाँ, जो गुरु किए हुए हैं वो जानते हैं, या नाम देते हैं मंत्र, या नाम देते हैं, किसी को नहीं बताना। और बाबा क्या कहता है, पूरी दुनिया को, कोई आत्मा रह ना जाए, सबको मंत्र दो, ये मन मना भव का मंत्र सब तक जाना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा जो थे, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, शिव बाबा के अवतरण से पहले ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक लाइफ थी, 12 गुरु किए, और अपने गुरुओं के प्रति बाबा इतनी श्रद्धा रखते थे, इतनी भावना, और इतना विश्वास कि आधी रात को भी अगर गुरु ने बुला लिया तो बाबा ये नहीं कहेगा आधी रात, गुरु ने कहा दिन तो दिन और रात तो रात। ऐसे ही जो बाबा की हिस्ट्री हम सुनते हैं उसमें एक प्रसंग आता है कि घर में बच्चे का जन्मदिन था और बहुत बड़ी पार्टी रखी थी बच्चे के जन्मदिन की, और उस पार्टी में बहुत मेहमान आए हुए थे, कुछ आने वाले भी थे, और उसी समय गुरु का तार आया, गुरु का तार आया कि फौरन आ जाओ। तो बाबा ने तैयारी कर ली और यशोदा माँ को कहा कि गुरु का तार आया है और मैं जा रहा हूँ, पार्टी तुम संभाल लो। तो उसने कहा बाबा कैसे होगा, आपके कारण तो सभी मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि बाबा का संबंध तो बहुत जो समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग थे उनसे था। तो बाबा ने कहा चाहे जो भी हो, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है और मुझे जाना ही है, और बाबा गए। और कारण कोई ऐसा अर्जेंट नहीं था, वो बाद में भी हो सकता था, लेकिन ये श्रद्धा थी बाबा की अपने गुरु के प्रति कि गुरु की आज्ञा को वो कभी नहीं टालते थे। तो बाबा हमेशा कहते हैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। ये तीन बातें गुरु के संबंध से कि बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उसके प्रति हम आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं और ईमानदार हैं, फरमान बरदार हैं। पूरा निश्चय है हमारा बाबा के ऊपर, 100% निश्चय जिसको हम कहेंगे। और इन्हीं विशेषताओं के कारण शिव बाबा ने उन्हें अपना रथ चुना। ऐसी बहुत विशेषताएं थी ब्रह्मा बाबा के अंदर, और बाबा कहते हैं मैंने एक अनुभवी रथ लिया है। तो हमें बाबा वरदान भी देते हैं गुरु रूप में, कौन कौन से वरदान मिले, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वो गुरु कहते हैं ना चरण छूते हैं तो क्या वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, जो भी आशा होती है आने वाले की, सुखी भव, निरोगी भव, कई अपने रोग दूर कराने जाते हैं। तो बाबा कहता है मैं भी आप बच्चों की ये सब मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। अब आयुष्मान होने का भाव, ये आयुष्मान भाव का मतलब वो नहीं कि आपकी आयु लंबी हो जाए, आप 60 की बजाय 100 वर्ष जिएंगे, सिर्फ वो मतलब नहीं है। बाबा के आयुष्मान भाव का मतलब क्या है, ब्राह्मण जन्म की आयु, जब से ब्राह्मण जन्म हुआ और संगम युग के अंत तक हम ब्राह्मण जन्म में जिएंगे, ब्राह्मण जन्म छोड़कर जाएंगे नहीं, ठीक है। उसको कहा बाबा ने आयुष्मान भव। तो जन्मते ही बाबा अपने बच्चों को ये वरदान देते हैं, और हम योग लगाते हैं तो हमारे शरीर की आयु भी बढ़ जाती है। फिर बाबा कहते हैं निरोगी होना भी जरूरी है, व्यक्ति लंबी आयु तक जिए लेकिन खटिया पर पड़ा रहे तो ऐसे तो जीने से न जीना अच्छा है। कई लोग यही कहते हैं भगवान ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है, हमें मुक्ति दे दो, हमें उठा लो। तो निरोगी होना भी जरूरी है। तो कौन से रोग, जो माया के रोग लगे हुए हैं उनसे निरोगी भाव होने का वरदान भी बाबा हमें देते हैं। और अगर वो रोग लगे हुए हैं तो भले हम ब्राह्मण जीवन में हैं लेकिन तो भी हम स्वस्थ नहीं है, हमारी आत्मा तो स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम कैसे चलेंगे, सोच सकते हैं हमारी चाल कैसी होगी। फिर पुत्रवान भाव, धनवान भाव। पुत्रवान भाव बाबा कहता है वो दो बच्चे तीन बच्चे होते हैं उसकी बात नहीं, लेकिन आप बच्चे मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता है माना शिव बाबा का ज्ञान देकर के आत्माओं को दिव्य जन्म देने वाले हैं। ये ब्राह्मण जन्म कैसे होता है, अलौकिक ज्ञान सुनकर के ही होता है ना। तो हम बाबा के बच्चे निमित्त बनते हैं, हम निमित्त बनते हैं तब आत्माओं के लिए वो दिव्य अलौकिक जन्म होता है। तो ऐसे हम मास्टर रचयिता हैं, तो बेहद के रचयिता बनना, उसे बाबा कहता है पुत्रवान भव। क्योंकि अगर उनकी रचना की है तो फिर उनकी पालना भी करनी है, जैसे हम सबकी पालना होती है, होती है नहीं होती है? बाबा के घर में आए हैं, मधुबन में आए हैं, सबकी पालना हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? ऐसे ही जिन आत्माओं के निमित्त हम बनते हैं उनकी पालना फिर हमें करनी है। और ऐसे ही धनवान भव माना, जो बाबा ने हमें गुणों और शक्तियों का खजाना दिया है, उस खजाने से धनवान हम वर्तमान में बन जाते हैं और फिर वो धन जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है, सिर्फ अभी के नहीं लेकिन सदा काल के अविनाशी धन से हम संपन्न बन जाते हैं। तो गुरु रूप में मंत्र भी मिला, वरदान भी मिला और गुरु का हाथ भी हमारे सिर पर आया। तो इस रूप में हम बाबा को याद करें, कभी भी जब उन गुरुओं को देखते हैं तो हम बाबा को याद करें, देखो हमारे गुरु ने, जो सद्गुरु है, जो गुरुओं का भी गुरु है, उन्होंने हमें कितनी बेहद के वरदान दिए हैं। रोज मुरली में वरदान आता है, कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमें मुरली में बाबा का वरदान नहीं मिलता। अखुट है, सागर के समान बाबा हमें दे रहा है, बस हम लेने वालों पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ले पाते हैं। फिर जब साजन के संबंध की बात आती है, भाइयों के लिए कहेंगे सजनी और बहनों के लिए कहेंगे साजन, ऐसे ही कहेंगे वो संबंध। तो दुनिया में हम देखते हैं कि इस संबंध में थोड़ा कंजूस होते हैं सब, कंजूस होते हैं माना उनको कभी भी पसंद नहीं आता कि पत्नी उनके अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध रखे या पति उसके अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध रखे। होता है ना, दुनिया में इस बात को बहुत बुरा मानते हैं, परिवार टूट जाते हैं इसकी वजह से, जरा भी शक भी हुआ तो क्या होता है। तो बाबा भी इस संबंध में हमसे यही चाहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, भगवान को भी वफादारी पसंद है, तो एक बाप ही चाहिए, दूसरे जो भी संबंध हैं वो सब सेवा के लिए हैं। बाबा कहता है बाबा ही संसार है। तो हम अपने आप को चेक करें, क्या बाबा ही हमारे जीवन का आधार है, बाबा ही हमारा जीवन साथी है? देखो अभी संडे की मुरली थी, आपने सुनी अव्यक्त मुरली, सभी ने सुनी, बाबा ने कितना गुह्यता से उस बात को स्पष्ट किया है कि किसी आत्मा के प्रति लगाव झुकाव भी जाता है, सिर्फ बात करना ही पसंद है उससे, बहुत बात करना हमें अच्छा लगता है, इस चीज को हम बहुत साधारण सा मानते हैं, या किसी से बातचीत कर लिया उसमें क्या है, और उसको तो हम कभी गलत मानते ही नहीं है, इसके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता लिया उसमें क्या है, ये हमारे सेवा साथी हैं, इन सब बातों का हम थोड़ा एक्सक्यूज देते हैं। पर बाबा कहता है नहीं, वो भी सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हमारा झुकाव है जो लगाव में बदल सकता है, जो पुराने संस्कारों को इमर्ज कर सकता है, तो वो भी उतना भी नहीं, लेकिन बाबा को बीच में ला करके, माना प्यारे बनो लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनो, बाबा को हमेशा बीच में रखना है। ये जो कुछ भी है किसके कारण है? बाबा के कारण है। अगर बाबा बीच में रहेगा तो माया को फिर स्थान नहीं मिल सकता, फिर माया नहीं आएगी बीच में। तो ये संबंध, वैसे भी दुनिया में भी संबंध को बहुत प्रेम वाला संबंध कहते हैं, तो बाबा से अगर हम इस संबंध का अनुभव पूरा, जैसे कहते हैं बाबा के स्नेह में हम समा गए, उनके लव में हम लीन हो गए, तो बहुत जल्दी लगन में मगन स्थिति का अनुभव हम इस संबंध से करते हैं। और जितना बाबा से लगन हमारी लगी हुई होगी तो फिर बाबा भूलेगा नहीं, याद करें ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन बाबा भूले कैसे? ये संबंध ऐसा है, दुनिया में भी इंसान की इंसान से लगन लग जाती है ना, तो वो भूलता ही नहीं है, भूलना चाहते हैं तो भी वो नहीं भूलता है, आप सभी यहाँ बैठे हैं, बहुत अनुभवी होंगे इस बात के कि 24 घंटे वही व्यक्ति दिमाग में घूमता रहेगा जिससे जिससे लगाव हुआ है। तो यहाँ सिर्फ परिवर्तन करना है कि व्यक्ति से वो लगाव निकालकर कहाँ लगाना है, बाबा में लगाना है। और बाबा में अगर मेरी वो लगन लग गई तो बस बाबा बुद्धि से जाने वाला नहीं, बाबा अपने आप ही याद है, तो हम निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। और निरंतर योगी बने माना फिर माया जीत बनना, विघ्न जीत बनना हमारे लिए बहुत सहज होगा। सहज ही हम अपने विकर्मों को भी विनाश कर पाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव करेंगे और हम ये महसूस करेंगे कि जो पाना था वो पा लिया, क्योंकि बाबा हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले हैं। बाबा ही संसार है अगर, तो सर्व प्राप्तियां किससे होती हैं हमें? तो ये जीवन हमें कैसा महसूस होगा? ये जीवन हमें बहुत ही ऊंच श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन हमें अनुभव होगा। बाबा के संग का रंग, जिसके समीप हम होते हैं उसके हम समान भी बनते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है, जब दो लोग आपस में प्रेम में होते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं, जैसे समान हो जाते हैं। तो बाबा के संग का रंग उनकी समीपता से लगेगा तो समानता भी, यानी बाबा के जो संस्कार हैं वही मुझ आत्मा के भी संस्कार, अपने आप हमें नेचुरल महसूस होंगे। बाबा स्नेह का सागर है तो हम भी मास्टर स्नेह के सागर, बाबा विश्व कल्याणकारी है मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाबा शांति का दाता है तो मैं भी मास्टर शांति के दाता। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत से, पुरुषार्थ की मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे। और बाबा हमेशा कहता है जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। और मोहब्बत कैसे होगी? संबंधों से। तो सुबह से रात तक पूरी प्रवृत्ति है संबंधों को निभाने की। हम तो निश्चित भी कर सकते हैं कि अमृत वेले मुझे कौन सा संबंध अनुभव करना है। मुरली के समय तो है ही है कि वो हमारे शिक्षक हैं। फिर सारे दिन में कब माँ के रूप में, कब पिता के रूप में, कब साथी के रूप में, कब दोस्त के रूप में, और सोते समय भी जैसे बताया कि माँ के रूप में बाबा की गोदी में जाकर के सो जाना है। तो सारा दिन हम कोई ना कोई संबंध से बाबा को याद करते रहें तो बाबा के अलावा कोई याद आएगा ही नहीं, है ना? उस मेहनत से फिर हम छूट जाएंगे। तो ऐसे हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।